धन्यवाद आप सबका। आप उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण के संदेश भगवद गीता जो मानव मात्र के कल्याण के लिए है उसको श्रवण करने के लिए पधारे हैं। और ये निवास स्थान किसका? विजय महिपाल जी के निवास स्थान पे उन्होंने ये सत्संग आयोजित किया, उनका धन्यवाद करते हैं। भगवद गीता समस्याओं से घिरे हुए लोगों को मुश्किल से निकालने के लिए भगवान का संदेश है। तो क्या हमारे को कोई समस्याएं हैं कि हम समस्याओं से मुक्त हैं? आपका क्या विचार है? इस दुनिया में कोई समस्या है कि नहीं है? कोई समस्या नहीं? है समस्या है क्या? मानो तो समस्या, मानो तो नहीं है। हाँ जी, संसार में सारी समस्याएं ही है। संसार का अर्थ क्या होता है पता है? जो सरकता जाए, कभी हाथ ना आए। संसार का मतलब है सरकना, जो सरकता जाए और कभी हाथ ना आए। जो अभी दिख रहा है हमारे सामने वो कल नहीं रहेगा, उसको संसार बोलते हैं। संसार हाथों के बीच से, जैसे पानी पकड़ोगे कितनी देर के लिए रहेगा? थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा ना। ऐसे सब कुछ इस संसार में हाथों से निकलता जा रहा है। तो ये संसार का स्वरूप है। और फिर इसको कहते हैं सागर, और हम हैं इसके बीच में। अब सागर के बीच में कब तक हम रह सकते हैं? सागर के बीच में कितनी देर रहोगे? ज्यादा समय रह सकते हैं क्या? नहीं ना। भले शौक हो तो ना, कभी बड़े जहाज में घूमने जाएंगे तो कुछ समय रहेंगे, फिर भी हिलता रहेगा। और दूसरा, सागर में हमेशा वेव्स आती रहेंगी। वेव्स कभी खत्म होती है सागर की? सागर कभी शांत हो सकता है? तो फिर इस संसार को सागर क्यों कहा? क्योंकि इसमें कभी भी स्थिरता आने वाली नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो संसार सागर है, और भगवान की भक्ति इसमें बहुत बड़ी सुंदर नौका है। जो ये संसार सागर पार करने के लिए है। और ये वर्णन कौन कर रहा है? इस ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, ब्रह्मा आदि सब देवता, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले कंस के कारागृह में मां देवकी के उदर को प्रणाम कर रहे हैं। अभी कृष्ण प्रकट भी नहीं हुआ है, उससे पहले हैं, कह रहे हैं कि आपके चरण कमर भगवान, उनकी नौका बनाकर संतों ने भवसागर पार करने का साधन बना लिया है। इतने बड़े इस ब्रह्मांड के देव, जिनको पूरी दुनिया पूजती है, जिन देवताओं को सारी दुनिया पूजती है, वो देवता जन्म लेने से पहले भगवान की माता, जिसको भगवान ने माता का सौभाग्य दिया, उसके उसको प्रणाम कर रहे कहे हैं। भगवान को अभी प्रकट भी नहीं हुए, अदृश्य भगवान को कहते हैं कि आपके चरण कमल जब इस धरती के ऊपर पड़ेंगे और आपकी शिक्षाएं भगवद गीता भागवत आदि, वो संत उसकी बहुत सुंदर नौका बना देंगे और लोग उसको इस भवसागर पार करने के लिए अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे। तो अब ये प्रश्न है कि क्या हम इस नौका को उपयोग में ला रहे हैं? हाँ जी, रह रहे हैं समुद्र में, सामने नौका खड़ी है, हम उसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे तो कब तक तैरते रहेंगे। अब हम तैर रहे हैं, असल में जिंदगी में जो भी हम घर में सुबह से शाम कर रहे हैं वो अपने हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन नौका के ऊपर चढ़ के आराम से बैठ जाएं तो मंजिल आ जाएगी। और भगवान ने एक बहुत सुंदर शब्द कहा है भगवद गीता में, भवामी निचरात मृत्यु संसार सागरात, भवामी निचरात मई आवेद सिद्ध चेत साम, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है, अथवा जिसका चित्त किसको कहते हैं, मन के एक विभाग को चित्त कहते हैं, अथवा जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, एक बात। और दूसरा इसका अर्थ है जिसने अपने चित्त में मेरे को बिठा दिया है, अथवा मन मेरे को दो या मेरे को मन में बिठा दो, ऐसा भक्त जो अपना मन मुझ में लगाता है उसको नित्य रात, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मृत्यु संसार सागरात, इस संसार सागर का दूसरा नाम क्या रख दिया, मृत्यु संसार, मृत्यु लोक, इसको मृत्यु संसार कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जिस संसार में हम रह रहे हैं इसमें, इसका नाम ही मृत्यु संसार है, इसलिए कोई भी आदमी इस दुनिया में शांति से रह नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु का भय तो सदा के लिए बना रहता है। उसमें से मैं निकाल लूंगा उसको, भवामी निचरात मृत्यु संसार समुद्रता, समुद्रता का मतलब उसको गीला भी नहीं होने दूंगा पानी में। अगर तो तैर रहा है तो गीला तो होगा ही ना, समुद्रता ऊपर ऊपर से उसको उठा लूंगा और नौका में बिठा लूंगा, वो मेरा दर्शन करता रहेगा और मैं नौका चलाता रहूंगा, ये भगवान कह रहे हैं। वो बैठ के नौका में मेरा दर्शन करेगा और मैं नौका चलाऊंगा, उसको करना क्या है, बस मन मौज में लगा रहे। ये भक्ति योग के 12वें अध्याय का बहुत सुंदर श्लोक है, जहां नौका का वर्णन है, तो वो नौका आपके घर में आप ले जाके रख दीजिए भगवत गीता के रूप में, भागवत के रूप में, और इस नौका में चढ़ने का अर्थ है इसका अध्ययन करना। अगर रोज इसका अध्ययन करने का नियम बनाएंगे आप, ऐसे थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि बच्चों को तो पढ़ना ही पड़ता है ना रोज, और नहीं पढ़ते वो आपको अच्छा नहीं लगता है उस दिन, क्या विचार है, जो अपना बस्ता नहीं खोले बच्चा तो आपको कैसे लगता है घर में, हाँ अच्छा नहीं लगता है, और बच्चों को बस्ता कोई नहीं खोलना का कार कहे तो अच्छा लगता है ना, हाँ ठीक है कि गलत है, बच्चा बस्ता नहीं खोले तो पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, और बस्ता नहीं खोलना बच्चे को अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमारे बस्ते में भगवान ने ये दो किताब भेजे हैं और वो हमारा पिता है, हम नहीं खोलते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता है और खोलना हमको अच्छा नहीं लगता है, ये हमारी समस्या है, क्या ख्याल है। जब हम बच्चे होते हैं तो समझते हैं कि ये बड़े हमको रोज पढ़ने को कहते हैं ये अच्छा नहीं है, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों को कहते हैं आप पढ़ो आपके लिए अच्छा है, ये ठीक है गलत है, तो गलत कौन है, बच्चे गलत है कि हम गलत हैं, हाँ बच्चे गलत हैं, वो नहीं पढ़ते हैं वो ठीक नहीं कहते हैं, जो पढ़ना चाहिए ये सही है, क्यों जी। तो संदेश क्या मिला इससे आपको, ये छोटे से उदाहरण से, आपके घर के उदाहरण से आपको क्या संदेश मिला, कि हमको नित्य शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, इसको स्वाध्याय यज्ञ बोलते हैं, ये यज्ञ है, और यज्ञ अपने आप को पवित्र करने के लिए किया जाता है, यज्ञ पवित्रता का वातावरण को पवित्र करता है, हृदय को पवित्र करता है और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो ये सबसे बड़ा और उत्तम यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्र का अध्ययन करना। लक्ष्य क्या बोलता है? अरे कृष्णा, अरे बोल, जागा। तो इसको थोड़ा सा जीवन में सीरियस लेना चाहिए, समय निकाल कर शास्त्र को लेना चाहिए और उसके अंदर हमारे हित की, भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा क्या, तब हित काम है या तेरे हित की मुझे कामना है, क्यों मैं गीता बता रहा हूं, तब हित काम है या इष्टोषी में दृढ़म इति, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तेरे हित की कामना से मैं तुम्हें ये शिक्षा दे रहा हूं। अब आप अपनी जगह पे खड़े होकर कहें, आप बच्चे को बोले बेटा तेरे भले के लिए तुम्हें कह रही हूं, यही कहोगे ना, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, मैं तेरे हित के लिए तुम्हें कह रही हूं, तुम बैठ के पढ़ो। जैसे यही शब्द आप कहोगे बच्चे को कि और कुछ भाई तेरा भला है इसमें बेटा, मेरे को क्या मिलेगा, यही कहोगे ना, तेरा भला है। लेकिन बच्चा अपना भला नहीं समझता और हम बड़े होके भी अपना भला नहीं समझते। इसका अर्थ सीधा सा ये है कि हम उम्र में भले बड़े हो जाएं लेकिन बच्चों वाला अभी तक हमारा बुद्धि का स्तर बच्चों के स्तर का है कि हम नहीं पढ़ना चाहते। क्यों भाई, ठीक है कि नहीं, सच लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कौन है खुशबू, लास्ट टाइम क्या कथा की थी अपन ने, आपको याद है हमने आपसे क्या पूछा था, भगवान सब जगह है ऐसे था, क्या था कुछ विषय, क्या याद है, कुछ नहीं, क्या बोला था बेटी, निष्काम भगवान की भक्ति करनी चाहिए। निष्काम भक्ति का अर्थ क्या है सुन लीजिए, कारखाना है बाप का, कारखाना किसका है, और बेटे को कहता है बेटा ये तुम कारखाना है इसमें काम करो, और बेटा कारखाना में काम करता है, कारखाने से जो आता है वो बाप का भी है बेटे का भी है, ठीक है। अब एक आदमी को रखा है नौकर कारखाने में काम करो, बोले तनख्वाह लूंगा, भाई लो तनख्वाह। तो कारखाने में बाप के कारखाने में काम करने वाला बेटा अच्छा कि कारखाने में नौकरी करने वाला अच्छा, हाँ बेटा अच्छा कि नौकरी वाला अच्छा? तो ये दुनिया किसकी है, भगवान की, और हम किसके हैं, दुनिया भगवान की, ये कारखाना दुनिया का भगवान का, हम उसके बेटे बन के काम करें अच्छा कि तनख्वाह लेके काम करें अच्छा? तो ये हो गया निष्काम कर्म। अब अगर नौकर का, अगर नौकरी करने वाला काम पे ठीक टाइम नहीं आए, गलती करे तो मालिक क्या बोलेगा, निकाल देता हूं, और बेटा काम में गलती करेगा तो क्या कहेगा, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तुम्हारा अपना है इसको संभालो, चिंता नहीं। कल मैंने उदाहरण दिया था, एक काम करने वाली घर में मासी काम करती है, उसे वो रखा हुआ टेबल के ऊपर वो शो वाला प्लेट टूट जाए तो क्या करोगे, हाँ आपको मालूम है क्या करना है, हाँ तनख्वाह से काटेंगे, तनख्वाह से। और आपके लड़के छोटे से गिर जाए तो क्या करोगे, बेटा चोट तो नहीं लगी, अब दोनों में अंतर कितना हो गया। तो भगवान के पास भी अब जाके कहें कि भगवान हमारे कृष्णा मंत्र जप रहे, तुम्हारी गीता पढ़ रहे हैं, हमारा ये काम कर दो, तो हो गया मासी वाला काम। और जाके कहा हरे कृष्णा हम आपके हैं, आपकी सेवा में हैं, आप आज्ञा कीजिए कैसे आपकी सेवा करके आपको सुखी करें, तो हो गए बेटे। अब कौन सी वाली सेवा आपको ठीक लगती है? क्या मंदिर में रोज प्रार्थना करने का चाहिए? जब मंदिर में जाएं तो क्या कहना चाहिए? या बोलते हैं आप ऐसे, तुम्हें पांच माता तो आप पिता हो, आप माता हो, लेकिन फिर भी आपको हमारे दुख का पता नहीं है। आपको ये, आपको हमारे दुख का पता नहीं है, इसलिए आप हमारा दुख सुन लीजिए। इसलिए जब पृथ्वी ब्रह्मा जी जो पृथ्वी का बेटा ही है, उसको लेके शंकर जी के साथ भगवान विष्णु को प्रार्थना करने गई अवतार के लिए खीर सागर, तो पृथ्वी के बोलने से पहले ही विष्णु का, आपके दुख का मुझे पता है। भाई पृथ्वी का विष्णु तो पति है, पति को पत्नी के दुख का पता नहीं हो और पत्नी बताए फिर पता लगे तो पति कैसा? बाप को अगर बेटे के दुख का पता नहीं है तो बाप कैसा? तो फिर भगवान को क्या हमारा पता नहीं है कि हमारी समस्या क्या है, क्या हम कौन से दुख से गए में से गुजर रहे हैं? बस हाँ, हाजिरी में जाके खड़ा होके बोलना हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी सेवा में लगे हुए हैं, कैसे हम अच्छी तरह से इस जीवन में आपके लिए, आपकी प्रसन्नता लिए के लिए कर सकें, ऐसी बुद्धि दीजिए। पूरे शास्त्रों में एक ही चीज भगवान से विशेष मांगी गई है, क्या? बुद्धि। गायत्री मंत्र में क्या कहते हैं? धीमहि बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए। बुद्धि मांगने आज तक कोई मंदिर में गया है? हाँ, कोई गया है? भगवान को कहा है कि मेरे को बुद्धि दो? हम तो भगवान को कहते तुमसे ज्यादा हम बुद्धिमान है। आप भोले हो, भगवान को भोला कहते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान समझते हैं। बुद्धि मांगने कोई नहीं गया आज तक, और भगवान ने कहा ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूं। देते भगवान सिर्फ बुद्धि है और मांगने कोई नहीं जाता। हाँ क्या? इसकी जगह पे उल्टा लिखा है, वो मैं बताऊंगा नहीं। जब मैं असली बुद्धि योग देता हूं तो सारा धन लेता था उसके बदले में। ये कथा तो किसी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन वो कहता है जब धन ले लेता हूं मैं अपने आप को दे देता हूं और लक्ष्मी के साथ तुम्हारे घर में आ जाता हूं, तेरे कागज के नोट ले देता हूं और असली लक्ष्मी दे देता हूं। भगवान आएगा तो लक्ष्मी साथ में आएगी ना। इस दुनिया वाले सारे लक्ष्मी को तो घर में पकड़ के लाके बांध के रखना चाहते हैं और नारायण को दरवाजे के ऊपर खड़ा कर देते हैं कि अंदर मत आना। ये लक्ष्मी को भोगने का भाव है ना, ये रावण का विचार है। राम भले वनम में भटके लेकिन सीता को मैं भोगना चाहता हूं, ये असुरी विचार है और दुनिया असुरी विचारों से भरी हुई है। आप राम जी को ले आइए तो सीता अपने आप आ जाएगी, आप नारायण को लाइए तो लक्ष्मी आ जाएगी। आसान तरीका है कि नहीं? लेकिन दुनिया के ऊपर प्रभाव लक्ष्मी का ज्यादा है। हरे कृष्णा। तो क्या चाहिए, लक्ष्मी नारायण दोनों चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए? आप अपने घर में दोनों सुखी रहना चाहिए और भगवान की पत्नी को अलग करना चाहते हैं, ये अच्छा विचार है? हाँ, ये विचार अच्छा तो नहीं है ना? ओ बोलता कीर्तन का टाइम हो गया, उसका हाँ, उसकी इच्छा कीर्तन करने की। हरे कृष्णा। तो बेटा हमारा पहला आपसे अनुरोध ये है, जैसे आप अपने बच्चों से अनुरोध करते हैं कि बेटा पढ़ो, ऐसे हमारा आपसे विनती है कि आप शास्त्र को थोड़ा खोल के अपने जीवन की दिशा को समझिए। समय बहुत कम है इस दुनिया में और काम हमारे को बहुत बड़ा करना है। बड़े से बड़ा काम करना है, और सबसे उत्तम काम, बड़े से बड़ा काम है कि भगवान को अपनाना है। आपके जीवन में सबसे बड़ा काम कौन सा है उत्तम? माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा उत्तम काम क्या होता है? बड़े से बड़ा काम जो आप करके बोलते हैं अब हम आजाद हो गए, क्या काम है मेरी माँ? वो
भगवान की सेवा करता,
बहुत अच्छा है। लेकिन ये सेवा काम याद आया, पहले एक बड़ा काम होता रहा तब ना, कौन सा काम होता रहता है? बच्चों को क्या सेट करना है, खड़ा किया, फिर क्या करोगे बच्चों का? शादी हो गई तो हम फ्री हो गए, बहुत अच्छा। हमारी शादी हुई हम फ्री हुए? फिर अपने आप से पूछेगा हमारी शादी हुई हम फ्री हुए क्या? हाँ हो गए फ्री। हाँ कितना बड़ा आश्चर्य है, हम समझते। देखो झूठ मत बोलना, बोलना सच। हम समझते हैं कि सुखी हो जाएंगे और ज्यादा उलझते हैं। ये आपसे थोड़ा बड़ी उम्र की ठीक कह रही है कि नहीं कह रही है बच्चियों? हाँ हरे कृष्णा। मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि सत्य को थोड़ा सा, हम सत्य को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सत्य क्या है? मैं प्रश्न दूसरी दृष्टि से पूछा था कि हम जब बच्चों के शादियां हो जाती हैं तो हम अपने आप को फ्री समझते हैं कि हमारा भार उतर गया, उसके लिए चिंता कितनी होती है? ढूंढते हैं कि ढूंढते हैं भाई, लड़का या लड़की जो भी ढूंढना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अपने तो आप तो नहीं होता है, क्यों भाई ढूंढना पड़ता है कि नहीं ढूंढना पड़ता है? तो अपने को भी इन शास्त्रों को पढ़ने से अपने सगे को, सगा संबंधी जो है, जो हमारा हितेशी है, जो हमको कभी नहीं भूलता है, जो सीना ऐसे ठोक के कहता है सुहृद सर्वभूतानाम, मैं आप सबका शुभ चिंतक मित्र हूं, उसको ढूंढना है। शास्त्रों में ढूंढो कि कौन मेरा है। अब हम अपना कौन है अलग अलग धारणाएं बना के बैठे कि मेरा ये है मेरा वो है। इस दुनिया में जिस किसको भी हमने मेरा मान के रखा है उसमें से हमारा इस संसार के व्यवहार में साथ देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस यात्रा की समाप्ति के समय कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। ये सत्य है कि झूठ है? और इस संसार की यात्रा को समाप्त हर एक के को एक समय के ऊपर करना है। इसको हमारी भाषा में हम बोलते हैं एक परीक्षा सबको देनी पड़ती है। स्कूल के अंदर सबसे मुश्किल का काम होता है पढ़ने में, हाँ, एग्जाम्स। एग्जाम्स मुश्किल होते हैं और एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है। इस दुनिया में सबको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका पेपर आउट है, लेकिन डेट सीक्रेट है, सरप्राइज एग्जाम है। एग्जाम सरप्राइज है, पेपर आउट है, डेट हरेक की अलग है। और पेपर आउट क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा, मुक्त्वा कलेवरम, जब ये शरीर छोड़ता है तो मेरे पास आएगा। पेपर आउट कि उस समय किसका स्मरण करना है, उसका अभ्यास अभी करेंगे तब उस वक्त वो स्मरण में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? उस वक्त कोई चीज संसार की जिसको हमने अपना मान रखा है वो तो हमारे साथ जाने वाली नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन जिसको याद करना है उसका अभ्यास किया, तैयारी की। अगर तैयारी नहीं की तो हम अच्छे स्टूडेंट नहीं है इस दुनिया के विद्यालय में। परीक्षा देनी है ये तो सबको मालूम है, तैयारी नहीं की तो हमने गलती कर दी। हमारे को तो मास्टर बना के भेजा है इस दुनिया में कि इनको एग्जाम की तैयारी कराओ। मास्टर जी का तो अपने टाइम पे काम है बताना, बेटा ये एग्जाम है, ये तुम्हारा पेपर आएगा, ये तुम बैठ के याद कर लो, तुमको ये उत्तर दोगे तो पास हो जाओगे और फिर तुम्हारा आगे जीवन में तुम आगे बढ़ जाओगे, और पास नहीं होगे तो यहां फेल। तो अंत समय में समय कितना मिलेगा ये बताइए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक पल का समय भी नहीं होता है। उस समय कैसे भगवान याद आएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से अभ्यास करना पड़ेगा। आप बताइए, अचानक किसी को भगवान न करे चलते हुए पांव में मोच आए तो क्या मुंह से निकलता है जनरली? हाँ, क्या निकलता है? मेरी माँ, माँ निकलता है। क्यों? क्योंकि बचपन में जब भी हमें कष्ट हुआ माँ ने हमारा साथ दिया, इसलिए माँ का नाम निकलता है। आप देख लीजिए, मेरी माँ ऐसे होगा उस वक्त, निकलता है कि नहीं निकलता है? क्यों निकलता है? क्योंकि बचपन में जब भी हमें कष्ट हुआ तो माँ ने हमका कष्ट से निवारा, तो एक अभ्यास हो गया तो माँ का नाम निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? तो उसका एक्सपीरियंस हमको हो गया। क्यों, इसका क्या मूड है, क्या बोल रहा है? हरे कृष्ण बोलेगा, कीर्तन करेंगे? तो अपन को अभ्यास थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। शास्त्र पढ़ने से किसको याद करना है उसका पता लगता है, और फिर कैसे याद करना है ये पता लगता है, और फिर उसको याद करने का अभ्यास करना हमको पड़ता है। एग्जाम हरेक को सबको अपना देना पड़ेगा, कोई दूसरे का एग्जाम नहीं दे सकता। सहायता कर सकता है अंत समय में, भाग्यशाली वो है जिसके अंत समय में चार सज्जन बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करें, वो भाग्यशाली इस दुनिया में है। तो ऐसा संघ बना रखो, बना लो, जब जरूरत पड़े तो चार भले मानस आके आपके चारों ओर बैठ के भगवान का नाम लें, और उस वक्त दुनिया की बात न करें। पहले ही दुनिया याद, और कोई आके दुनिया की बात करके उस वक्त हमारा अंत न बिगाड़े, इसलिए अच्छा संघ जरूरी। ये सब शिक्षा अच्छे संघ से प्राप्त होगी, और ये सत्संग उस अच्छे संघ का साधन है। तो एक आधा दिन हफ्ते में निकाल के सत्संग का अपना संघ बनाओ, संघ बनाओ। पहले ये सत्संग ही होता था, जब से सत्संग कम हुआ तब इसका दूसरा रूप हो गया। मिलते तो हम फिर अभी भी हैं, मिलने का तो हमने कोई ना कोई साधन बना ही रखा है। उसका नाम सत्संग की बजाय आजकल क्या है? हाँ भाई, बच्चियों को भी पता है। अरे यार, अब हमारे हित का क्या है ये बताओ, दोनों में से ईमानदारी से बताना। कोई एक तो किट्टी पार्टी वाला भी हाथ ऊपर करे। हाँ, जानते हैं कि अच्छा ये है, लेकिन जाएंगे वहां क्यों? कारण क्या? मैं बताऊं आपको सच्चा कारण, आदमी नशा क्यों करता है? दुख भुलाने के लिए। दुख भुलाने के लिए नशा करता है कि थोड़ी देर लिए मेरा दुख दिमाग से चला जाए। ये हम उस पार्टियों में हंस के नाच के गा के खा के थोड़ी देर के लिए अपने दुख का भार उतार के आते हैं, और कोई इसका कारण नहीं। सच ये है। क्यों भाई, आपका क्या विचार है? हाँ, सच ये है कि नहीं है? और वापस आके फिर उतने ही परेशान होते हैं। फिर नशा उतरने के बाद तो आदमी उतना ही परेशान हो जाता है ना उसी काम। इसलिए गुरु नानक साहब ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, अगर नशा ही करना है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अगर नशा ही करना है तो भगवान के नाम का कर लो, जो दिन रात चढ़ा रहे उतरे ही नहीं। वो क्या नशा जो रात को पियो और सुबह उतर जाए? तो हमको ये निर्णय करना है कि कौन सा काम हमारे हित का है। दो शब्द हम थोड़े दिन से चर्चा में ला रहे हैं भक्तों के संग में, एक शब्द होता है श्रिय, एक शब्द होता है प्रिय। प्रिय का मतलब है कि मेरे को अच्छा क्या लगता है, श्रिय का अर्थ है कि समाज में अच्छा क्या है, शास्त्र में अच्छा क्या है, असल में मेरी आत्मा के लिए क्या उत्तम कार्य है वो करना चाहिए। तो प्राय दुनिया सारी प्रिय के पीछे लगी हुई है। श्रिय भगव शास्त्र में पढ़ेंगे तो अर्जुन पूछा था यत श्रिय, जो मेरा श्रिय है, स्वनिश्चितम, वो निश्चित करके मुझे बताओ जो मेरा श्रिय है। प्रिय नहीं, श्रिय। बुद्धिमान आदमी श्रिय की बात करता है, अनजान आदमी प्रिय के पीछे पड़ा रहता है। हमने उदाहरण क्या दिया था श्रिय और प्रिय का, किसी को याद है? वो भी चलेगा। उदाहरण साधारण भाषा में उदाहरण ये दिया था, जिसको शुगर की बीमारी है उसको अच्छा लगता है गुलाब जामुन खाना, लेकिन उसकी भलाई में है करेला खाना। क्या विचार है? उसको क्या खाना चाहिए जिससे वो सुखी रहेगा? करेला। लेकिन वो खाना क्या चाहता है? एक प्रिय गुलाब जामुन खाना है, श्रेय करेला खाना है, क्योंकि उसकी बीमारी ऐसी है। अब हम क्या कर रहे हैं? श्रेय की तरफ जा रहे हैं कि प्रिय की तरफ जा रहे हैं दुनिया में? ये जिसको समझ में आ गया वो इस दुनिया में बुद्धिमान है। जिसको अपना हित समझ में आ जाए, और अपना हित का मतलब मैं हूं कौन, आत्मा का हित जिसको समझ में आ जाए, हित आत्मा का करना है। शरीर को तो ठीक ठाक रखना है, शरीर को संवारने के लिए जितना समय लगता है वैसे उतना ही समय आत्मा के संवारने में लगाना चाहिए। अब आप अपने जीवन में देख लीजिए कितना समय हम शरीर के संवारने में लगाते हैं, आत्मा के लिए कितना समय निकालते हैं। तो सब बातों की एक तीन बातें आपको हमने बताई। एक तो अच्छा संग आपका हितकारी है, तो ऐसे लोग जो श्रेय के रास्ते पे चल रहे हैं उनका संग करना चाहिए। दूसरा, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, वो हमारे हित के लिए है। हमको अच्छा नहीं लगे तब भी पढ़ना चाहिए, जैसे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है फिर भी पढ़ना जरूरी है, वो फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी है। बच्चों को किताब पढ़ने उनके एग्जाम के लिए जरूरी है, और हमारे को फाइनल एग्जाम के लिए किताब पढ़ने जरूरी है। और तीसरा, ये अभ्यास भगवत नाम का करते रहना चाहिए। ये पेपर आउट है और ये एग्जाम सबको देना है। जो अभ्यास नहीं करेगा वो निश्चित रूप से उस वक्त पास होने के पोजिशन में नहीं रहेगा। तो ये तीन बातें आपसे हम विनती करते हैं। अब कौन इसको करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। हमारी ये आपसे प्रार्थना है कि हित इसमें। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है? रेडीमेड आपके पास अभी जीदा हाँ आ गई, लाइए मुझे दिखाइए क्या कहना चाहती हैं आप, पता लगे। हरे कृष्णा। आप में से कितने कितनों के साथ फोन अभी साथ में है, किस किस के पास मोबाइल फोन है? वेरी गुड, ऑलमोस्ट 90% के पास फोन है, 99 के पास फोन है। अब हम सिर्फ इतना कहते हैं इस फोन का बिल महीने का कितना आता है, हाँ 500 आपका आता है, बेटी बड़े है तो और किसी का कम वाली बोलो, 50 रुपए वाली माता जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ हाँ अच्छा, वेरी गुड, हर महीने आता है, गुड। और काम किस आता है फोन, किस काम आता है फोन? बात करने के लिए, किस से? हस्बैंड से। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ हाँ अच्छा है। अथवा जिनको हम चाहते हैं उनसे बात करने के लिए, ठीक है। हर एक के पास ये फोन की तरह भगवत गीता एक होनी चाहिए, भगवान से बात करने के लिए, जगतपति से बात करने के लिए। रोज इसको खोलना चाहिए, भगवान से बात करनी चाहिए, और आपके पूरे जीवन का टोटल बिल आएगा जो आपका महीने के बिल आता है उसके बराबर या उससे कम, जीवन भर का बिल। क्या विचार है? अब वो फोन जिनके पास है उनके हाथ तो ऊपर हो गए, ये फोन किसके पास नहीं है भगवान से बात करने वाला, किसके पास नहीं है, अथवा कौन इसको अपने पास नहीं रखना चाहता है, हाँ कौन नहीं रखना चाहता है इस फोन को? रोज भगवान से बात करना, एक श्लोक रोज पढ़ना, 2 साल ये काम आपका साथ देगा, 2 साल के लिए कभी भी बिल नहीं आएगा। रोज बात करना, जी भर के बात करना। बोलिए, बोलो बच्चे लोग, क्या विचार है? पर्सनल कॉपी हर एक के पास होनी चाहिए और रोज इससे भगवान से बात करनी चाहिए। अब आप में से किसी के मन में ऐसा विचार आया कि ये मेरे पास होनी चाहिए और मेरे पास नहीं है? हाँ जी, किसके पास नहीं है? हमारी तरफ से गिफ्ट है उसको, कौन है ऐसा किसके पास नहीं है? हाँ जी, कोई है जिसके पास नहीं है? जय हो मेरी माँ। वैसे तो जिनके पास है वही यहाँ आए हैं, असल में मैं जानता हूँ आप, मैं बहुत से लोगों के पास नहीं है, और है बहुत के पास है, ये सत्य है, क्योंकि हमने प्रयास किया है कि हर एक घर में एक पहुंचाने का प्रयास तो हमने किया है, लेकिन फिर भी घर में पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर एक के पर्सनल कॉपी नहीं है, सारे घर की एक कॉपी है, पर्सनल कॉपी हर एक की होनी चाहिए। तो कुछ वहां पड़ी है, किसी को दिल में आए कि हमको रोज ये अभ्यास करना है, सब नहीं कर पाएंगे मैं जानता हूं, लेकिन 4-5 के मन में आ सकता है, और अभी आएगा थोड़ी देर के लिए, कल के ऊपर रहा तो फिर 1 साल बीत जाएगा। ये दिमाग जो है ना, दिल कहेगा ले लो, दिमाग कहेगा क्या करेंगे, क्या करोगे। बात दिल की माननी चाहिए कि दिमाग की माननी चाहिए? दिल की, और मना करेगा दिमाग। दिल क्यों कहता है लेनी चाहिए? क्योंकि दिल में हम खुद बैठे हैं आत्मा, और बैठा है परमात्मा, वो कहते हैं ये अच्छा है, इसमें तुम्हारा श्रेय है, और मन में कौन बैठा है? शैतान बोलता है इसको मत लो, अंदर में झगड़ा चल रहा है ये। हरे कृष्णा। तो ये है अवेलेबल, पीछे पड़ी है पैक, अभी तक इसका खोली भी नहीं है, जिसको चाहिए वो इसको ले ले। ये भगवान आपके साथ इस गीता के रूप में जाएंगे, आप इसको खोल के पढ़ेंगे, रोज कृष्ण से बात होगी और आपके हरे कृष्णा वाणी आई आ गई हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये भगवद गीता आपके लिए है, जिसको चाहिए ले जाइए। और कोई प्रश्न नहीं तो 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसका करताल बेचारा लेके थक गया उस सब से। धन्यवाद आप सबका, आप आए हैं। ये 3 काम कोई करना चाहता है, आप अपना जरा इच्छा बताइए। कोई ये संग शास्त्र का अध्ययन और नाम का अभ्यास कोई करना चाहते हैं तो ये कुछ आपकी बहनें हैं जो ये कार्य